फिर व्यास जी के पूछने पर सनत कुमारी जी ने कहा, महर्षि, रणभूमि में आकाशवाणी को सुनकर जब देवेश्वर शंभु ने श्री हरि को प्रेरित किया, तब वे तुरंत ही अपनी माया से ब्राह्मण का वेश धारण करके शंखचूड़ के पास जा पहुंचे और उन्होंने उससे परमोक्ष कवच मांगा। फिर चंड का रूप बनाकर वह तुलसी के घर की ओर चले। वहां पहुंचकर उन्होंने तुलसी के महल के द्वार के निकट नगाड़ा बजाया और जय जयकार से तुलसी को अपने आगमन की सूचना दी। उसे सुनकर सती सावित्री तुलसी ने बड़े आदर के साथ झरोके के राज से राजमार्ग की ओर झांका और अपने पति को आया हुआ जानकर वह परम आनंद में निमग्न हो गई। उससे तत्काल ही ब्राह्मणों को धन दान करके उनसे मंगलाचार कराया, फिर अपना श्रृंगार किया। इधर देवताओं का कार्य सिद्ध करने के लिए माया से शंडचूड़ का स्वरूप धारण करने वाले भगवान विष्णु रथ से उतर कर देवी तुलसी के भवन में गए। तुलसी में पति रूप में आए हुए भगवान का पूजन किया, बहुत सी बातें की, तदंतर उनके साथ रमण किया। तब उस साध्वी ने सुप सामर्थ्य और आकर्षण में व्यतिक्रम देखकर सब पर विचार किया। संदेह उत्पन्न होने पर वह तू कौन है, यूं डांटती हुई बोली। तुलसी ने कहा, दुष्ट मुझे शीघ्र बतला कि माया द्वारा मेरा उपयोग करने वाला तू कौन है। तूने मेरा सत्व नष्ट कर दिया है, अतः मैं तुझे शाप देती हूँ। सनत कुमार जी कहते हैं, ब्रह्मान तुलसी का वचन ये सुनकर श्री हरि लीला पूर्वक अपनी परम मनोहर पूर्ति और मूर्ति को धारण कर लिए। तब उस रूप को धारण करके देखकर तुलसी ने लक्षणों से पहचान लिया कि साक्षात विष्णु है, परंतु उसका प्रतिवत्य नष्ट हो चुका था, इसलिए वह कुपित होकर विष्णु से कहने लगी। तुलसी ने कहा, हे विष्णु, तुम्हारा मन पत्थर के सदृश कठोर है, तुमने दया का लेश मात्र भी नहीं है। मेरे पति धर्म के भंग हो जाने से निश्चय ही मेरे स्वामी मारे गए। चूंकि तुम पाषाण श्रद्ध कठोर दरिद्र हो और दुष्ट हो, इसलिए अब तुम्हारे शाप से पाषाण स्वरूप ही हो जाओ। सनत कुमार जी कहते हैं, मुनि कहकर चंडचूट की वह सती सावित्री पत्नी तुलसी फूट फूट कर रोने लगी और शोक होकर बहुत हर्षने विलाप करने लगी। इतने में वहां भक्त वसल शंकर जी प्रकट हो गए और उन्हें समझाकर कहा, देवी, अब तुम दुखों को दूर करने वाली मेरी बात सुनो। श्री हरि भी स्वस्थ मन से उसे श्रवण करे, क्योंकि तुम दोनों के लिए सुखदायक होगा। वही मैं कहूंगा, भद्रे, तुमने जिस मनोरथ को लेकर तप किया था, यह तपस्या का फल है। भले वह अन्यथा कैसा भी हो सकता है, इसलिए तुम्हें उसके अनुरूप ही फल प्राप्त हुआ है। अब तुम इस शरीर को त्याग कर दिव्य देह धारण कर लो और लक्ष्मी के समान होकर नित्य श्री हरि के साथ वैकुंठ में विहार करती रहो। तुम्हारा ये शरीर जिसे तुम छोड़ दोगी नदी के रूप में परिवर्तित हो जाएगा। वह नदी भारतवर्ष में पुनः रूपागढ़ के नाम से प्रसिद्ध होगी। महादेवी, कुछ काल के पश्चात मेरे वर के प्रभाव से देव पूजन सामग्री में तुलसी का प्रधान हो जाएगा। सुंदरी, तुम स्वर्लोक में मृत्युलोक तथा पाताल में सदा श्री हरि के निकट निवास करोगी और पुष्पों में श्रेष्ठ तुलसी का वृक्ष हो जाओगी। तुम वैकुंठ में दिव्य रूप धारिणी वृक्षधारा पी और देवी बनकर एकांत में श्री हरि के साथ क्रीड़ा करोगी। उधर वर्ष में जो नदियों की अधिकराष्टी देवी होगी, वह परम पुण्य प्रदान करने वाली होगी और श्री हरि के अंशभूत लवण सागर की पत्नी बनेगी तथा श्री हरि भी तुम्हारे शाप पत्थर का रूप धारण करके भारत में गड़की नदी के जल के निकट निवास करेंगे। वहां तीखी दाढ़ों वाले करोड़ों भयंकर कीड़े उस पत्थर को काट कर उसके मध्यम चक्र का आकार बनाएंगे। उसके भेद से वे अत्यंत पुण्य प्रदान करने वाली शालिग्राम शीला कहलाएगी और चक्र के भेद से उसका लक्ष्मी नारायण आदि भी नाम होगा। विष्णु की शालिग्राम शीला को वृक्ष रूपरणी तुलसी का सगामम और सदा अनुकूल तथा बहुत प्रकार के पुण्यों की वृद्धि करने वाला होगा। भद्रे, जो शालिग्राम शीला के ऊपर से तुलसी पत्र को दूर करेगा, उसे जन्मांतर में स्त्री वियोग की प्राप्ति होगी। जो शंख दूर करके तुलसी पत्र को हटाएगा, वह भार्यहीन होगा और सात जन्मों तक रोगी बना रहेगा। जो महाज्ञानी पुरुष शालिग्राम शीला तुलसी और शंख को एकत्रित रखकर उसकी रक्षा करता है, वह श्री हरि का प्यारा होता है। सनत कुमार जी कहते हैं, व्यास जी इस प्रकार कहकर श्री शंकर जी ने उस समय शालिग्राम को तुलसी के परम पुण्य दायक महात्म्य का वर्णन बताया, पश्चात अंतर ध्यान हो गए। इस प्रकार सदा सत्पुरुषों का कल्याण करने वाले शंभु अपने स्थान को चले गए और उसने अपने उस शरीर का परित्याग करके दिव्य रूप धारण कर लिया। तब कमलापति विष्णु उसे लेकर वैकुंठ को चले गए। उसके छोड़े हुए शरीर से गटकी नदी को प्रकट हो गई और भगवान अच्युत भी उसके तट पर मनुष्य को पुण्य प्रदान करने वाली शिला के रूप में पारिग्रत करते हुए चले गए। मुनि अब उसमें कीड़े के अनेक प्रकार के छिद्र बताते रहते हैं। उनमें जो शिलाएं गटके की जल में भरती रहती है, जो स्थल पर ही रह जाती है, उन्हें पिघलाह कहते हैं और वह प्राणियों के लिए संतापकारक होती है। व्यास जी, इस प्रकार तुम्हारे प्रश्न के अनुसार मैंने शंभु का सारा चरित्र, जो पुण्य प्रदान तथा मनुष्य की सारी कामनाओं को पूर्ण करने वाला है, तुम्हें सुना दिया है। यह पुण्य आख्यान जो विष्णु के महात्म्य से संयुक्त तथा भोग और मोक्ष का प्रदाता है, तुमसे मैं वर्णन कर दिया है। अब क्या सुनना चाहते हो?